Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Vishwananda Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hari Om. Hari Om. Om Jananam Yadganam Brahmati Mirahanam Vitanute Padambo Jadhyanam Dishati Paramananda Padavim Smarami Pratastam Pranata Janata Jushta Charanam Akhandanandam Shri Guru Varamaham Brahma Paramam Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudhirai Shankaram Shankaracharyam Keshavam Bhadarayanam Sutra Bhashya Kritau Vande Bhagavantau Punah Punaham Ishvaro Guru Ratmeti Murti Bheda Vibhagane Vyomavat Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaham Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatmane Pranata Kleshanashaya Govindaya Namo Namaham Govindaya Namo Namaham Harihi Om Narayan 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 Atma Brahma hai, iska char charanon mein vichar kiya ja raha hai. Ek charan tha jagrat avastha, मैं अपने आप को जागृत पुरुष मत मानो, जागृत अभिमानी मत मानो, जागृत दृष्टा मानो. फिर स्वप्न अवस्था में स्वप्न पुरुष मत मानो, स्वप्न अभिमानी मत मानो, स्वप्न दृष्टा मानो. फिर सुषुप्ति अवस्था में सुषुप्त पुरुष तो कोई नहीं है और इसलिए वहां कोई अभिमानी भी नहीं है और सुषुप्ति का साक्षी मैं हूं, दृष्टा मैं हूं, ये वृत्ति भी वहां उदय नहीं होती. तो जागृत में ऐसा विचार करो कि सुषुप्ति अवस्था में मैं सुषुप्ति अवस्था का दृष्टा मैं ही था. तो था होने से सिद्धि तो हो ही गई कि था, और दृष्टा एक ही है. जागृत का जो दृष्टा है वही स्वप्न का दृष्टा है, वही सुषुप्ति का दृष्टा. अब ये दृष्टा है क्या चीज, इसके ऊपर विचार करना चाहिए. क्योंकि दृष्टा शब्द का अर्थ तो है देखने वाला, लेकिन जहां आपने वाला कहा वहीं ये किसी न किसी उपाधि से बंध जाता है, वो अभिमानी में ही हो जाता है. भाई दृष्टा और अभिमानी में क्या फर्क है? अभिमानी माने किसी चीज का अभिमान करता है कि ये मैं हूं, ये मेरा है. और जब ये कहता है कि मैं जागृत अवस्था का दृष्टा हूं तो जागृत अवस्था का अभिमान ही हो जाता है. तो दृष्टा का जो शुद्ध स्वरूप है उसके ऊपर विचार करना चाहिए। दृष्टा उसको कहते हैं, नंबर एक, जो ज्ञान स्वरूप हो, मतलब जिसमें ज्ञान उधार लिया हुआ ना हो, जिसका स्वरूप ही ज्ञान हो। अगर उधार लिया हुआ ज्ञान होगा तो कभी उसमें से एब्सेंट भी हो जाएगा, उस समय फिर मेरा दृष्टा कोई दूसरा हो जाएगा। देखो, ये विचार करना चीज पे कि मेरा दृष्टा भगवान है, और फिर कहते हैं हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। अरे भाई, तो तुम दृष्टा हो कि वो दृष्टा, पहले ये तो निर्णय कर लो। मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूं तो मैं दृष्टा हुआ, वो दृश्य हुए, और भगवान का मैं दृश्य हूं तो भगवान दृष्टा हुए, मैं दृश्य हुए। तो या तो ये मानो कि दोनों दृष्टा हैं और दोनों दृश्य हैं, और या तो ये मानो कि भाई दृष्टा तो मैं हूं ही हूं पक्कम पक्का, क्योंकि जागृत स्वप्न में तो दृष्टा मैं ही होता हूं। अब सुषुप्ति की बात मालूम नहीं है, लेकिन वहां भगवान का भी अनुभव नहीं होता है, और भगवान का दर्शन भी मान लो मुझे हुआ या होगा, तो होगा तो मुझको ही ना, या मेरी जगह कोई और देख जाएगा। तो दृष्टा तो हर सूरत से मैं ही रहूंगा। तो एक बात तो यह है कि इसमें ज्ञान जो है दृष्टा में, ये उधारू नहीं है, इसको स्वयं प्रकाश बोलते हैं। इसको जानने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, यहां तक कि अपने जानने के लिए भी अपनी जरूरत नहीं है। जैसे हम ये कहें कि सूर्य को जानने के लिए एक दूसरा सूर्य चाहिए, भाई सूर्य तो स्वयं प्रकाश रूप है, और वो तो जला हुआ ही रहता है, भले ही हम उसे चाहे अन्य रूप से जानते रहे हो। इस समय हम जानते हैं मैं शरीर हूं, लेकिन जान तो अपने ही को रहे हैं, मैं शरीर हूं, तो हूं से तो सत्ता हो गई, और मैं मतलब अभिमानी भी हो गया, और बोले क्या हूं कि शरीर हूं। तो मैं ये तो नहीं कहता हूं ना कि मैं दृष्टा हूं, और कह भी मत देना नारायण। नहीं तो पास में जो भी पागलखाना होगा उसी में भेज देंगे लोग। अरे बोले ये कहां से आ गया दृष्टा दृष्टा, तो समझ लो इसको, मैं दृष्टा हूं तो दृष्टा ही हूं, ज्ञान ही हूं। तो ये दुनिया की चीजों को वाला वाला कब बनता है, ज्ञाता कब बनता है, दृष्टा जो है, जब इसके पास कोई उपाधि हो, बिना उपाधि के ये वाला नहीं बनता है। और उपाधि जो होती है वो तो नारायण उससे भिन्न ही होती है। पास रखी हुई चीज, होप माने पास, और आधी माने जो आधान कर दे अपने गुण दोष को, जो पास में रखी हुई चीज में डाल दे, आधान कर दे, उसको बोलते हैं उपाधि। तो ये शरीर पास में है, इसलिए इसके गुण दोष जो है वो आत्मा में मालूम पड़ने लगते हैं, आधान हो जाते हैं। लेकिन अगर ये बात समझ में आ गई कि ये उपाधि है, तो फिर गुण दोष आधान होते हुए भी जब मेरा स्वरूप ही ज्ञान है, तो उसमें जितने और गुण मालूम पड़ेंगे वो सब शरीर के संपर्क से हैं, संसर्गाध्यास है टेक्निकल शब्दों में, अध्यास है, दो चीजों के मेल के कारण ये सारी गड़बड़ मालूम पड़ रही है। तो एक तो यह हो गया कि मैं ज्ञान स्वरूप, दूसरी बात यह है कि ज्ञान स्वरूप जो दृष्टा है वो कभी कर्ता नहीं होता। ओम नमो नारायण महाराज जी, आइए सुस्वागतम। कहां बिरा देंगे? तो कर्तापना जो मेरे में मालूम पड़ता है ये भी उपाधि के कारण है। ये उपाधि कहां से आ गई, ये भी तो एक प्रश्न है ना, कहां से आ गई? तो इसका हल तो अभी आगे कारिका आ रही है उसमें आएगा, लेकिन है ये उपाधि। अच्छा, भोक्तृत्व जो है, भोक्तापना, ये भी इसका स्वरूप नहीं है। अगर भोक्तापना इसमें है तो जानने पने को ही भोक्ता भोगना बोलते हैं। मान लो ये किसी को बहुत बढ़िया चीज आप दे दो और उससे पहले उसे सोने का इंजेक्शन लगा दो तो क्या उसका सुख उसको होगा? और कितना भी डॉक्टर चीरफाड़ कर दे और इंजेक्शन लगा हुआ है तो क्या उसका दुख होता है? उसको बाद में होता है जब चेतना लौट के आती है। इसका अर्थ हुआ कि बिना ज्ञान हुए न सुख मालूम पड़ता है न दुख मालूम पड़ता है। तो भगवान श्री शंकराचार्य ने लिखा कि भोक्तृत्वम नाम उपलब्धित्वम, ये गीता भाष्य में। बस उपलब्ध करना ये इसका भोग है। दूसरे के शरीर में सुख होता है तो मैं तो सुखी नहीं होता, दूसरे के शरीर में दुख होता है मैं तो दुखी नहीं होता, लेकिन अपने शरीर में फांस भी लग जाए तो वे सीधे डॉक्टर के यहां पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर में उपाधि नहीं, ममता हमने ऐसी स्थापित कर रखी, ये मेरा है ये तेरा है। तेरे के साथ तादाद में नहीं होता, मेरे के साथ ही तादाद में होता। अच्छा, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा घर, इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो तब भी तो मुझको ही दुख होता है, लेकिन पड़ोसी के यहां कुछ भी हो जाओ तो कुछ नहीं होता। तो ममता का घेरा जिसका जितना है उसी घेरे में उसे दुख होता है, क्योंकि वो अहम के निकट आ जाता है। अहम में ज्ञान होता है। महाराज श्री कहते हैं कि इदम और अहम यदि ये अलग अलग रहें तो कोई समस्या नहीं है। जब ये इदम अहम से चिपक जाए तो वो तो चिपक नहीं सकता है, क्योंकि इदम तो दृश्य है, वो दृष्टा से कैसे चिपकेगा? तो हम ही चिपकते हैं नारायण, चेतन ही चिपकता है और चेतन ही छूटता है। तो अज्ञान के कारण किसी भी दृश्य के साथ हम चिपक जाते हैं। जिसको हम छोड़ नहीं सकते चाहते हुए भी, छोड़ने की जरूरत नहीं है लेकिन जिसको चाहते हुए भी छोड़ नहीं सकते, तो भले ही आप अपने को अनासक्त अनासक्त कहते रहो लेकिन हो आसक्ति। कल आपको बताया था ना, आसक्ति माने अरे ओ शक्ति आ आ बैल मुझे मार। आत्मा में चिपकने की योग्यता नहीं है, जबरदस्ती हम उसमें ये चिपक पैदा करते हैं। 13वें अध्याय में गीता में जो ज्ञान के 20 साधन बताए हैं तो उसमें एक साधन ये भी है, आसक्ति ही अनभिश्वंग पुत्र दार गृहादिशु। इन्हीं जगह चिपकता है आदमी, तो बोले भाई कम से कम अभिष्वंग तो छोड़ो, अब अपने तरफ का शब्द बोल देते हैं, आपके यहां क्या कहते हैं, हम लोग तो खोपी भरना बोलते हैं, ऐसे पकड़ के जो है। एम्ब्रेसिंग तो हल्का शब्द है, वो तो छोट भी सकता है, लेकिन खोपी भर के जब नारायण चिपका लेते हैं तो फिर दूसरा छूटता भी नहीं, छूटना चाहे तो भी नहीं छोड़ने देते। तो ये जो हमने अभिष्वंग माने खोपी भर रखी है, काय काय की पुत्र दार गृह और आदिशु में भृत्यादि, इनमें से अभिष्वंग को छोड़ो। छोड़ो माने अशक्ति ही, शक्ति का अभाव, आसक्ति नहीं है वहां पर, पाठ जो है उसमें आसक्ति नहीं है, कई लोग आसक्ति पाठ बोलते हैं उसको, आसक्ति ही अनभिष्वंग। तो आसक्ति माने शक्ति चिपक पने का अभाव। तो समझ लो कि आत्मा किसी से चिपक नहीं सकता, न कर्म लिप्यते नरे, कर्म जो है वो मनुष्य से नहीं चिपकता, कोई भाव किसी से नहीं चिपकता, हम ही दौड़ दौड़ कर चिपक जाते हैं। तो ये दृष्टा जो है वो किसी से नहीं चिपकता है, अभिमानी चिपकता है, पुरुष चिपकता है। तो एक तो ज्ञान स्वरूप है, दूसरे कर्ता नहीं है, तीसरे भोक्ता नहीं है, चौथे चिपकता नहीं है, और पांचवा सुखी दुखी नहीं होता है। जो दृष्टा होगा वो सुखी दुखी नहीं होगा ना। हमारे आदरणीय महात्मा तो कहते हैं, एक सज्जन जो है वो सुनिया है सत्संग में कि तुम तो साक्षी हो, कुछ करते नहीं हो, जो करता है वो साक्षी नहीं होता है, जो साक्षी है वो करता नहीं है। ठीक है, रात को घर में आ गए चोर, तो उसकी पत्नी ने कहा कि भाई कुछ खुटखुट हो रही है, देखो ना कौन है। बोले चुप रहो, हम साक्षी हैं। अरे बोले हमारी बेडरूम में चले गए, दिखते हैं दूसरे वाले में, उसमें तो अलमारी खोल रहे हैं वो। बोले कुछ जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हम तो साक्षी हैं। तो महात्माओं के लिए तो ठीक है, गृहस्थों के लिए ठीक नहीं है, उन्हें तो अभिमानी और साक्षी, थोड़ी देर के लिए अभिमान धारण कर लो फिर पीछे छोड़ देना, क्योंकि छोड़ सकने में समर्थ है, पकड़ने में भी समर्थ है, छोड़ने में भी समर्थ। अच्छा, भगवान ने जबरदस्ती हमको ये अध्यास दे दिया है क्या? नैसर्गिक कोई हम है? क्या है लोक व्यवहार, भगवान शंकराचार्य ने कहा ये नैसर्गिक तो है, अध्यास अनादि काल से चलता चला आ रहा है, लेकिन है इसमें अविद्या मिली हुई। अविद्या को अविद्या समझते ही अविद्या के पैर उखड़ जाते हैं, और अविद्या को ही समझ लो कि भगवान की माया है, इससे तो आज तक कोई छूटा ही नहीं है, हम भी नहीं छूट सकते हैं, हे भगवान हमको छुड़ाओ। तो भगवान को भी हंसी आती है कि मैंने जब पकड़ाया हो तब तो मैं छुड़ाऊं, पकड़ा तो तेने खुद है नारायण, हिम्मत कर। छोड़ना क्या है, कोई भौतिक वस्तु को छोड़ना, ये अविद्या कोई भौतिक वस्तु थोड़ा ही है, सिर्फ अपने में जो हमने गलत धारणाएं स्वीकार कर रखी हैं। अन्यथा ग्रहण रूप, ये पारिभाषिक शब्द है, आत्मा का जो अन्यथा ग्रहण रूप है, रूप है, स्वरूप है, उसको छोड़ना। मैं शरीर हूं, ये हूं तो मैं शुद्ध साक्षी आत्मा, लेकिन शरीर मानता हूं। रस्सी को रस्सी नहीं जानते हो, ये तो हो गया रस्सी का ग्रहण। बोले वहां तक तो बात ठीक थी, नहीं जानते हो, लेकिन अगर उसे सांप मानने लगे तो ये अन्यथा ग्रहण हो गया। तो मैं आत्मा को ब्रह्म को नहीं जानता हूं, कोई बात नहीं, नहीं जानते, लेकिन मैं शरीर हूं जी, मैं शरीर हूं को काटने के लिए महात्माओं ने कहा तुम शरीर नहीं हो, तुम जीव हो। जीव आज तक किसी ने देखा नहीं है ना, इसके बारे में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कितना बड़ा होता है जीव। रामानुज कहते हैं कि अणु परमाणु होता है, वेदांत में मानते हैं कि मध्यम परमाणु होता है जितना बड़ा शरीर है। जैनी लोग भी ऐसे ही मानते हैं। जब मानना ही आया तो पूरे शरीर में मान लो, एक जगह मानने की, एक जगह मानोगे तो फिर आपके हाथ से निकल गया, फिर उसका जीवन तो नहीं कट सकता। नारायण, तो मैं जीव हूं ये किसको काटने के लिए था कि मैं शरीर हूं। अब जीव को पकड़ के बैठ गए कि मैं तो जीव ही हूं। अब बहुत तेरा बताते हैं भाई तुम जीव नहीं हो, तुम साक्षी हो, फिर बताते हैं तुम ब्रह्म हो, तुम तो वो हो जिसमें जीव एक इकाई मिथ्या प्रतीत हो रही है, लेकिन कोई इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं। बड़े भाग्य हो, अनेक जन्मों का पुण्य हो और महात्माओं की कृपा हो, ईश्वर की कृपा की तो जितनी जरूरत है उतनी हो गई है, अब तो महात्माओं की कृपा चाहिए। और महात्मा किसी से पास जाके तो कृपा करते नहीं है, आपको गरज हो तो महात्मा के पास जाओ। तो ये जो साक्षी है, इस साक्षी के बारे में विचार करना चाहिए। और भी छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि साक्षी ब्रह्म है तो ब्रह्म के सारे लक्षण साक्षी में आ जाएंगे, लेकिन वो पीछे के लिए है। पहले तो इतना ही जानो कि जो पुरुष है वो साक्षी नहीं है, जो अभिमानी है वो साक्षी नहीं है, जो कर्ता भोक्ता सुखी दुखी परिच्छिन्न अंतःकरणवान मानता है वो साक्षी नहीं है, वो दृष्टा नहीं है। अच्छा, दृष्टा और साक्षी इनमें क्या अंतर है? आप रूप देखते हो तो देखने वाला आत्मा तो मौजूद है इसमें साक्षी तो, लेकिन क्या बिना आंख के देख सकते हो? तो जो किसी करण की सहायता से ही देखता हो उसको बोलते हैं दृष्टा, वही साक्षी जागृत अवस्था में दृष्टा है। अच्छा, स्वप्न जो है वो बिना मन के देख सकते हो क्या? तो वही साक्षी स्वप्नावस्था में दृष्टा है, और सुषुप्ति अवस्था में न कोई इंद्रिय है न कोई मन है, लेकिन वहां जो है सुख भी मालूम पड़ता है और अज्ञान भी अविद्या भी मालूम पड़ती है। नारायण, तो वो किससे देखते हो भाई? तो वहां देखने वाले के बीच में और इनके बीच में कोई और कुछ नहीं है, कोई कारण नहीं है। तो सुषुप्ति का जो दृष्टा है वो साक्षी का शुद्ध स्वरूप है। अब कोई साक्षी दो थोड़ी हो गए कि जागृत में दूसरा हो गया और स्वप्न में दूसरा हो गया, लेकिन उसको पकड़ना वहां से चाहिए। कारण निरपेक्ष होता है साक्षी, ये बात समझाने में तात्पर्य अगर समझ में आ गया तो दृष्टा और साक्षी दोनों एक ही है, और समझ में यदि नहीं आया है तो ये भेद कर लेना चाहिए। पहली कारिका में ये बताया था कल कि जागृत में चाहे विश्व हो चाहे वैश्वानर विराट हो, और स्वप्न में चाहे तैजस हो चाहे हिरण्यगर्भ हो, सुषुप्ति में चाहे प्राज्ञ हो चाहे ईश्वर संज्ञा हो, एक एव त्रिधा स्मृता, वो वस्तु एक ही है, तीन उसके नाम पड़ जाते हैं उपाधियों के बदल जाने के कारण। अब रिपीट करने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि यहां तो सत्संग होता ही रहता है, उपाधि और विशेषण का अंतर अवश्य स्पष्ट रहना चाहिए। दोनों का फंक्शन तो एक ही है, विशेषण का भी दूसरी चीजों से अलग करने का काम है। अब मान लो हम लोगों का ये वस्त्र है तो बोले ये महात्मा है, कैसे मालूम है कि ये वस्त्र पहने हुए हैं? लेकिन वस्त्र में जो ये रंग है, चाहे मील ने रंगा हो और चाहे हमने स्वयं रंग लिया हो, ये तो रंग ऊपर से ही चढ़ाया गया है ना, इसका ओरिजिनल रंग तो है नहीं है। तो अब इस रंग को छुटाना चाहो तो बहुत मुश्किल है। कहते पक्का रंग ना भैया माने छूटे नहीं, फिर भी छूट जाता है। तो जब तक नहीं छूटता है तब तक इसको हम विशेषण मानते हैं। जिस ये सफेद कपड़े वालों से अलग तो कर देता है हमको, इतना काम तो विशेषण का है, लेकिन ये रंग इसमें ऐसा घुस गया कि अब ये इसमें से छूटता नहीं है और उपाधि कभी घुसी ही नहीं उसके भीतर, वो तो सिर्फ पास रहती है।